ऐसे एक चीज थी कि उनकी कुछ वजह से उनको ऐसा लगा कि भारत में जाना। अभी इसके पहले जो भी भारत में आए, चाहे वो मोहम्मद गजनवी आया, उसके भी पहले एक आक्रांत आया था सिकंदर, पहले सिकंदर, उसके बाद में मोहम्मद गजनवी, उसके बाद में मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनवी 1024 में सोमनाथ का मंदिर उसने लूटा, उसके बाद में मोहम्मद गोरी 1192-93 में तराइन का युद्ध वन, तराइन का युद्ध दूसरा, उसके बाद में एक एक करके विदेशी आक्रांत भारत में आ गए। चालू हुआ सिकंदर से, उसके बाद में मोहम्मद गजनवी, उसके बाद में मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, वो बहुत बड़ी दूसरी स्टोरी है। उसके बाद में ही मुगलों का शासन भारत में आया। मोहम्मद गोरी जब गया तो उसने पीछे जिसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश को छोड़ गया। गुलाम वंश के बाद आए रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद आए तुगलक, तुगलक के बाद आए खिलजी, खिलजी के बाद आए लोदी, और लोदी को पराजित करने के बाद आया बाबर। बाबर से चालू हुआ मुगल साम्राज्य भारत में। तो भारत अगर आप देखें तो भारत सदैव परतंत्र रहा है, कोई ना कोई आया और भारत को गुलाम बनाया है भारत ने। भारत का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का अंत यानी एक युग का अंत था वो, क्योंकि उसका अंत के बाद ही मुगल शासक भारत में आ गए। भारत में आने के बाद बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, अंत लास्ट। तो 700 साल तक पृथ्वीराज चौहान के की हार, अर्थात भारत सीधा 700 साल तक मुगलों के अधीन हो गया। अब मुगलों के बाद वास्को डा गामा बीच में आया, फ्रांसीसी आए, डच आए, पोर्तुगल आए, एक एक करके भारत को गुलाम बनाया। अभी अब तक जो लोग आने वाले थे वो सब तलवार लेकर आए, हथियार लेकर आए, बंदूक लेकर आए, पर ये जो ब्रिटेन के लोग हैं, अंग्रेज जो है वो हथियार लेकर नहीं आए, उन्होंने अपनी नीति को बदल दिया। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बनाया, जिस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी भारत में व्यापार के इरादे से आई, उनका लक्ष्य कुछ और था, पर आई किससे, व्यापार करने के लिए। 1912 थॉमस रो वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय जेम्स वन टू विजिट, तो मुगल सम्राट जो था सलीम जहांगीर सबसे पहले उससे मिले, और भारत में ये आए सबसे पहले सूरत में, और सूरत में इन्होंने सबसे पहले अपनी छावनी बनाई, और देखते ही देखते सूरत के जो भी सामंत थे, जो भी जमींदार थे, उनको खत्म कर दिया और सूरत के राजा बन गए। ऐसा ही उन्होंने जैसा सूरत में किया वैसा ही ग्वालियर में किया, जो ग्वालियर में किया वही लखनऊ में किया। इससे करते 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 ईस्ट इंडिया कंपनी फैलती गई भारत। सबसे महत्वपूर्ण ये युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का ये युद्ध। अगर ये युद्ध ना होता तो भारत अंग्रेजों का गुलाम ना होता, अगर एक व्यक्ति नहीं होता केवल, तो भारत 250 साल तक गुलाम ना होता। ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, इसकी तारीख है 1757। 1757 से लेकर 1857 तक, 1857 से लेकर 1947 तक ये था पूरा गुलामी का युग। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसके पहले तक आ गई, 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सारे भारत में फैल गई। अब किसको ये पता नहीं चल रहा है कि ये कंपनी आई किस लिए है, ऐसे कुछ ही लोग थे जिनको ये समझ में आया ये कंपनी कुछ व्यापार के इरादे से नहीं आई, इनका लक्ष्य तो कुछ और है, ये भारत को गुलाम बनाने आई है, भारतीयों के धर्म कर्म को भ्रष्ट करने आई है। और जो सबसे पहला व्यक्ति था जिसको ये पता चला कि ये कंपनी केवल बिजनेस करने नहीं आई है, वो एक था बंगाल का नवाब, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो उसने ये सोचा कि मैं इस कंपनी के विरुद्ध लड़ूंगा। अब कंपनी का जो फर्स्ट गवर्नर था वो था रॉड क्लाइव, 84 गवर्नर जनरल हुए, लास्ट लॉर्ड क्लाइव फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947, दैट ही वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव। तो युद्ध हुआ दो, इस युद्ध के बारे में लगभग 150 किताबें हैं हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी इंग्लिश और हिंदी मिलाकर 150 किताबें केवल इस युद्ध के बारे में, प्लासी के युद्ध। तो इस युद्ध में क्या हुआ, कौन जीता, अंग्रेज के जो सैनिक थे वो कितने थे, 300, और भारतीय सैनिक थे सिराजी उद्दौला के, जो बंगाल का नवाब था, वो थे 18,000। तो कौन जीतना चाहिए, एक तरफ 300 और एक तरफ 18,000? विवेक क्या कहता है, कौन जीतना चाहिए? 18,000 जीतना चाहिए। जीता कौन, कौन जीता? अंग्रेज। क्यों, कोई बता सकता है क्यों अंग्रेज जीते इस युद्ध में, जबकि उनके पास केवल 300 सिपाही थे? लॉर्ड क्लाइव ने मैसेज भेजा लंदन में कि मुझे और सिपाही चाहिए। उसको यह भी पता था कि भारत का एक एक सिपाही अंग्रेजों को, 5 से 10 अंग्रेजों को मार सकता है, इतना शक्तिशाली एक सिपाही है। अब क्या करें, अंग्रेज उस समय नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध करने में लगे हुए थे फ्रांस में। अंग्रेज ने कहा हम नहीं दे सकते, आप उतनी ही सेना में कुछ भी करके जीतो। तो कैसे जीता ये युद्ध, कोई बता सकता है? रॉबर्ट क्लाइव, वेरी गुड। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत होशियार था, उसने ये सोचा कि ये युद्ध जीतना हमारे लिए असंभव है, तो क्या किया जाए, ऐसा कोई व्यक्ति देखा जाए जो कि लालची है, जो कि रिश्वत ले सके, जिसको खरीदा जा सके, जो भारत को बेच सके। अपने जासूस लगाए और पता चला कि सिराजी उद्दौला के इस सेना का जो सेनापति है मीर जाफर, उसकी हमेशा से इच्छा रही है कि वो खुद नवाब बने। तो उसने उसको पकड़ा है और उसको एक ऑफर दिया कि अगर हम जीत जाते हैं तो तुमको नवाब बना दिया जाएगा। और उसने मान लिया और उसने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने कहा तुम्हें एक ही चीज करनी पड़ेगी, जब मेरी तुम्हारी 18,000 की सेना आएगी और हमारी सेना होगी तो तुम्हारे जितने सेना के लोग हैं सब हथियार डाल दें। अब मीर जाफर को यह पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऑलरेडी सब इधर फैल चुकी है, ये युद्ध ऐसा था अगर ये युद्ध भारत हार गया तो पूरा भारत सीधा अंग्रेजों के हाथ में जाने वाला है। उसके बावजूद भी उसने वैसा ही किया और ये जो युद्ध था प्लासी का युद्ध, भारत हार गया। यहां से चालू हुई गुलामी की दास्तां। जैसे ये युद्ध, जैसे वो हार गया, उसके बाद में उन सिपाहियों के साथ भी क्या हुआ, उसकी भी बहुत बड़ी, जो 18,000 सिपाही थे अंग्रेजों ने उनकी परेड कराई, उनको कहीं लेके गए और सबके सब को मार दिया और फिर आखिर में मीर जाफर को भी मार दिया। उसको पहले नवाब बनाया फिर कहीं किसी और तरीके से उसको भी मार दिया। तो उसके बाद ये था प्लासी का युद्ध। यहां पे दिख रहा है द ब्लैक होल एपिसोड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये है मीर जाफर, ये है उनकी सेना, ये उन दोनों की गुप्त वार्ता हो रही है यहां पर, यहां पर ये सरेंडर हुआ। तो दारे पतन नहीं, ठीक है। ऐसी एक बात बहुत पहले भी हुई थी, जब सिकंदर भारत में आया था तब भी ऐसी एक बात हुई थी। तब तक्षशिला का जो राजा था, उसका जो बेटा था आंबी कुमार, उसने भी क्या कर दिए थे, सिकंदर के लिए दरवाजे खोल दिए थे भारत के आने के लिए। उसको पता था, क्योंकि उसको भी लालच था अखंड भारत का सम्राट बनने का, परंतु तब राजसी सत्ता ने नहीं, गुरुकुल की सत्ता ने सिकंदर को खदेड़ भगाया यहां से। वो कैसे, हम यहां एक सीन देखेंगे। यह है आंबी कुमार जो कि संधि कर लेता है सिकंदर के साथ। इसमें जो डायलॉग है, जो संवाद है, बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली। कर्मचारियों की ये सेना इतनी शक्तिशाली है, इसका ये प्रतीक
क्या आपने आदेश दिया था आचार्य?
आदेश गुरु ने दिया था। आंबी कुमार
तक्षशिला को आदेश दे रही जब अपनी की भूमि पर यवनों का ध्वज देखोगे तब क्या होगा हमें मार
तो गुरुकुल भी अपराधी सलेम नहीं
प्रश्न है जब संपूर्ण राष्ट्र का हो तो गुरुकुल से कैसे अलग कर सकता है मार
तो क्या मैं ये समझू कि मेरे निर्णय के विरुद्ध गुरुकुल विद्रोह का कोई प्रभाव करेगा
अपनी राष्ट्रीय अस्मिता व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास मांग में तुम्हारे लिए विद्रोह कहते हैं तुम्हें और
मुझे आपके मंदिरों की परवाह नहीं देना चाहे
मैं अपने राष्ट्र की परवाह करता हूँ इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप काल लाइन में रोजगारी क्षेत्र का स्थान रखें
अलग क्षेत्र अस्थायी नहीं है आचार्य भविष्य विषय के लिए निकलते हैं
पाश्चात्य जगत ने प्रकृति को सक्रिय करके पुत्र दिया पर्यावरण भी है जिसने करोड़ों देवपुत्रों को जन्म दिया है यहां मानव को ईश्वर बनने का हक दिया जाता है हम देव के वंशज हैं अर्थात भाई पाठ्यक्रम पद पर कमान
अपमान करने
अपने मान से काम्य कुमार राष्ट्र का अपमान करने जा रहे हैं क्या इस काम्य कुमार को धार है
आचार्य और इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए मैं किसी के भी आदेशों से बात नहीं
तक्षशिला पद पर भूमि भारत की खाती है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता हम कुमार
आप मेरे आचार्य
जाओ मैं स्वयं की रक्षा करवाऊंगी
मेरी भूमि पर मुझे आगे चले गए
बाकी है जाओ एक दिन तुम्हें बड़कों की सत्ता का बारे में मिल जाएगा मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कुमार जाओ
गुरुकुल की सत्ता उस समय नहीं होती तो इस समय भारत पर सिकंदर का शासन होता सिकंदर को भारत से जाना पड़ा वही अलक्षेंद्र की हार थी और उसका सूत्रपात करने वाले कौन थे गुरुकुल ये ब्रह्मचारीगण कोई शासक नहीं शासक तो डूबे हुए थे दिलासिता में धनानंद की कहानी है वहां पर और उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का प्रथम सम्राट बना और अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उसका अंत ही मुगलों का शासन भारत में आया उसके अंत के बाद अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई और धीरे 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 सब और फैलने लगी औध से लेके हैदराबाद से लेके मैसूर तक प्लासी के युद्ध के बाद और एक महत्वपूर्ण यहां पर युद्ध हुआ है वो युद्ध था शाहआलम के साथ उसे कहा जाता है बेटर ऑफ बक्सर ये दो युद्ध ऐसे है उसके बाद में जैसे कि पूरा ही भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था फिर जो ये कंपनी कहेगी उसी आधार से भारत के जो नियम जो कुछ था इनकी कंपनी के आधार से चलने लगे ये वही है बहुत सारे और भी इसमें छोटे छोटे पंक्तियां हैं जैसे एंग्लो मैसूर वार हुआ उसके बाद में मराठाओं के साथ वार हुआ ये सब होते होते पूरा भारत ही जैसे कब्जे में था एक बहुत सुंदर यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक थॉमस मैकिला करके एक अंग्रेज अफसर था उस समय जो कि भारत में आया और उसने वर्णन किया है कि भारत में क्या क्या है वो बहुत अच्छी चीज यहां लिखता है जिसने ये स्पीच दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 में वो लिखता है आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर हु इज थीफ सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री सच हाई मॉरल वैल्यूज पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड बी एबल टू कॉन्कर दिस कंट्री अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज वो लिखता है मैं इस भारत देश के कोने कोने में घूमा परंतु मुझे एक भी चोर नहीं मिला एक भी भिखारी नहीं मिला ऐसी संपन्नता इस देश में इतनी समृद्धि इस देश में है इतना हाई मॉरल कैरेक्टर लोगों का एक चरित्र इतने तेजस्वी लोग यहाँ रहते हैं हमें नहीं लगता हम भारत को गुलाम बना सकते हैं
जग में दान है शांति जग में दान है शांत
वो कहता है कि ये असंभव है भारत को गुलाम बनाना। अगर हमको भारत को गुलाम बनाना है तो वो क्या लिखता है, अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन, हमको इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना होगा, और वो है इसका आध्यात्मिक, इसकी विरासत, इसकी संस्कृति। जब तक हम भारतीय संस्कृति को नहीं तोड़ेंगे, इस देश को गुलाम बनाना असंभव है। बाहुबल से इस देश को नहीं जीता जा सकता। और उसके बाद में ही उसने क्या लिखा, वहां पर एक प्रस्ताव रखा कि भारत में जो गुरुकुल की सत्ता है, गुरुकुल के माध्यम से जो शिक्षा चालू है, उसको बदलकर हम यहां पर अंग्रेजी स्कूल चालू करें। उनको ये सिखाया जाए कि जो कुछ अंग्रेजी है वो सब अच्छा है, और जो कुछ देश का है वो अच्छा नहीं है। इनके मन में इस तरह की भावनाएं पैदा करो, उसके बाद ही भारत को गुलाम बनाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट लिखा है थॉमस मैकुलाय ने। इसके लिए हमारी जो शिक्षण पद्धति अभी भी चल रही है, उसको कहा जाता है मैकुलाय एजुकेशन सिस्टम। जो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल्स है वो सब ये है, पहले ये सब नहीं था भारत में। आगे, अब ये जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा था, ये संस्कृति ईस्ट इंडिया कंपनी चारों ओर फैल रही थी, पर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा विरोध चालू हुआ। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए, बहुत सारे विद्रोह है, जंगल महल विद्रोह, सन्यासी और फकीर विद्रोह, जिसकी कथा अमर आनंद मठ किताब में आती है, उसकी मूवी भी बनी हुई है। बंगाल का द्वितीय सैनिक विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, बैरकपुर का प्रथम सैनिक विद्रोह, वो हम देखेंगे, पर ये सारे विद्रोह कुचल दिए थे। आगे बहावी विद्रोह, धनराव विद्रोह, कोल्हापुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सारे विद्रोह है, नील विद्रोह, एक एक करके सारे कुचले गए। जहां पे लोगों ने असंतोष प्रकट किया, उनका विरोध किया, बगावत की, पर वो सारे वासुदेव बलवंत फड़ के, इसको भी पता चला कि महाराष्ट्र के है, पर इसकी भी मृत्यु कैसी हुई, किसने पकड़ा है इसको, उसके ही एक साथी ने उसे धोखा दिया, पकड़ा गया, फिर छूटा, फिर पकड़ा गया, और फिर फांसी हो गई। ऐसा ही अगस्त क्रांति, ये सारे जो आंदोलन है, राजबिहारी बोस की क्रांति, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, एक एक पर ये सारे के सारे विद्रोह, भंग भंग आंदोलन, हम देखेंगे इसके बारे में। अब जैसे मैं कह रहा था, अब तक सारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। सॉरी, अभी हम आज सबसे बड़ी जो क्रांति हुई भारत में वो है 1857 की, उसको कहते हैं सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह। विद्रोह को, विप्लव को, रिवॉल्यूशन को, बगावत को क्या कहूं। कहा जाता है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, महासंग्राम। जो चालू हुआ वो कैसे हुआ, आपने देखा प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 100 साल बीत गए। 100 साल में असंतोष का वातावरण है भारत में। 100 साल में जैसे, अच्छा, और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बताऊंगा, 100 साल तक भारत जैसे कंपनी के अंदर, कंपनी के वश हो गया और चारों ओर असंतोष का वातावरण है। सबसे पहला व्यक्ति, जिसने ये बगावत अंग्रेजों के विरुद्ध जो कि एक संघर्ष चालू किया, वो कौन था, मंगल पांडे। तो उस व्यक्ति से ये सारी क्रांति चालू हुई है। उसे कहा जाता है, जैसे मैंने कहा, सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह या विप्लव या रिवॉल्यूशन या इंकलाब कोई भी नाम दे सकते हैं आप। विद्रोह करने से अच्छा क्रांति शब्द अच्छा है इसके लिए। अभी ये सब कैसे चालू हुआ? अभी भारतीय कई सारे सैनिक ये कंपनी ने कंपनी के अंदर काम करने वाले थे। अभी एक बैरकपुर छावनी है जो कलकत्ता से 22 किलोमीटर दूर है। कलकत्ता का जो 22 किलोमीटर ये बैरकपुर जो है ये अंग्रेजों का सबसे पहली सैनिक छावनी थी भारत की, और यहां पर बहुत सारे भारतीय सैनिक काम करते थे, अंदर तैनात थे, उनके लिए काम करते थे। अब इनके बीच में असंतोष उत्पन्न हुआ, उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि भारतीय सैनिक भी थे, उनके सैनिक भी थे, परंतु इनका वेतन कम, उनका वेतन ज्यादा, इनको सुविधाएं कम, उनको सुविधाएं ज्यादा, वो सब भी बहुत सारे। इस ये जो क्रांति है इसके कई कारण है, सामाजिक कारण, राजकीय कारण, धार्मिक कारण। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था एक राइफल वहां पर इंट्रोड्यूस की थी, नई राइफल जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इस राइफल का जो कारतूस था वो दांतों से काटना पड़ता था, और वो जो कारतूस था, ऐसी अफवाह फैल गई कि वो जो कारतूस है सुअर और गाय की चर्बी से बनता है। अब ये जब भारतीय सैनिकों को पता चला कि हम ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं कि ये जो सुअर की चर्बी से तोड़ना पड़ता है, अभी भारत के लिए हिंदुओं के लिए गाय और मुसलमानों के लिए, क्योंकि उस सैनिक वो जो सैनिक दल था उसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे भारतीय, उनके लिए सुअर की चर्बी और ये हिंदुओं के लिए ये तो जैसे धर्म भ्रष्ट हो रहा है उनका। तो पहला व्यक्ति था मंगल पांडे, इसने इसका विरोध किया और जब उसको कोई उत्तर नहीं मिला उसने दो अंग्रेज ऑफिसर को मार दिया। उसी के साथ साथ हम एक यहां पे सीन देखेंगे कैसे ये हुआ। संतोष का वातावरण ये हुआ बैरकपुर, और उसने दो अंग्रेज ऑफिसर को मार दिया। 9th अप्रैल 1957 में उसके 1857 9 अप्रैल को कोर्ट मार्शल हुआ, बहुत सारे आरोप लगे और 10 तारीख को मंगल पांडे को फांसी हो गई। अब ये सब सारे भारतीय सैनिक देख रहे थे। अभी उसके अंदर इतना असंतोष था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ समय के बाद मेरठ में, उसी से कुछ दूर मेरठ में भी ये वार्ता जैसे फैल गई सब जगह। उनको भी पता चल गया कि ये जो कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है और दांतों से तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है उसको। उसके बाद वहां पर एक बहुत जबरदस्त असंतोष का वातावरण हुआ और उन सभी सैनिकों ने यह निर्णय किया कि जितने अंग्रेज वहां पर है मेरठ में हम सबको मार देंगे। उन्होंने एक चर्च में गए, चर्च में लगभग 50-60 अंग्रेज थे, उसमें बच्चे स्त्रियां सब थे, और सबके सब को जला दिया हिंदुओं ने जो सिपाही थे। और ये था, ये हुआ सुबह, फिर शाम तक उन्होंने जितने अंग्रेज उस गांव में थे सबको मार दिया। धीरे 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 ये जो सिपाही थे लगभग 200 थे, शाम हो गई। अब शाम होने के बाद उनको लगा अब क्या करना है, फिर उन्होंने सोचा अब चलो दिल्ली। दिल्ली जाकर सारे भारत में जितनी ये कंपनी है इसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसके उस समय जो शासक था हिंदुओं का वो था बहादुर शाह जफर। जैसे मैंने कहा बाबर से शुरुआत है, अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर। वो बेशक एक बहुत अच्छा शायर था पर एक कमजोर शासक था, बहुत ही कमजोर शासक। उसको डर रहता था हमेशा, वो सोचता था अंग्रेजों से दोस्ती करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, इस तरह से उसका मन दुविधा में रहता था। तो ये सारे सैनिकों ने निर्णय किया, 2000 सैनिक थे लगभग, उन्होंने निर्णय किया हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास और फिर वहां पर उन्होंने इस तरह का वो बादशाह को कहा कि अगर आप साथ नहीं दोगे तो भी फिर हम तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, आप साथ दो या ना दो। तो उसने साथ दिया और ये जो क्रांति है इसको एक नया रूप धारण हुआ। उन्होंने लगभग कहते हैं 50,000 जो अंग्रेज थे उनको मार दिया, ये सारे क्रांतिकारी कहो या सिपाही होने कहो। और उसके वजह से उनके मन में अंग्रेज जो थे बहुत क्रोधित थे। परंतु ये जो संग्राम है ये सफल नहीं रहा, इसके बहुत सारे कारण है क्यों सफल नहीं हुआ। ये जो भी 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है इसको दबा दिया गया, इसके कारण हम देखेंगे अभी। उसके बाद में जैसे उधर अंग्रेज उधर पार्लियामेंट हुई, जो जो बच के भागे उधर, उन्होंने सोचा कि अब वापस भारत पर आक्रमण करना है। और उन्होंने एक लिस्ट बनाई ऐसे कौन कौन है सारे भारत में जो कि रिश्वत ले सकते हैं, ऐसे बहुत बड़ी एक लिस्ट निकाली, क्योंकि भारत को वैसे जीतना बहुत असंभव बात है। तो वो सारी लिस्ट निकाली, वो सबको अपने तरफ किया, उनका चीन के साथ भी, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हमने भारत हमारे विरुद्ध आक्रमण करते तो हमारे अंडर जो अभी 70 देश है ब्रिटेन में जो राज्य कर रहा है वो सब बगावत करेंगे, फिर रिवॉल्ट करेंगे, विप्लव करेंगे, इसके लिए इसको दबाना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट बनाई और वो सारे राजाओं को अपनी तरफ ले लिया, उनकी सेनाओं को अपनी तरफ ले लिया और ये जितने लोग थे जितने सिपाही थे एक एक करके तोप से उनको उड़ा दिया गया। तो ये जो क्रांति थी एक साल तक चला, एक साल में सब शांत हो गया। और ये जो संग्राम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद में दो बातें हो गई। एक तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद भारत का डायरेक्ट जो कंट्रोल चला गया विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, सीधा कंट्रोल सीधा ब्रिटेन के पास चला गया। भारत में जो कुछ होगा वो सब अब वहां से पूछकर होगा, कंपनी बंद हो गई। और दूसरा एक हुआ जो मुगलों का शासन था भारत में, क्योंकि मुगलों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और वहां उसको मार दिया, उसी की आंखों के सामने उसके तीनों बेटों को भी मार दिया। तो ये क्रांति 1857 ये चिंगारी थी, पर उसके बाद में ये बुझी नहीं। जो मंगल पांडे ने जो जलाई वो चलती रही कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप से। एक दूसरा जिसमें बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट बजाने वाली जो एक व्यक्ति है वो है रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, नाना साहेब पेशवे, इनकी एक मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में ये सारा 1857 की ही क्रांति का मैं बता रहा हूं, वैसे तो दब गया ये भी, पर ये सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों का प्रतिकार किया, विरोध किया। चमक उठी 1857 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी थी, लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। 21 साल की उम्र में ही शहीद हो गई। ऐसे ही कितने नौजवान हैं, कितनी स्त्रियां हैं, अवंतीबाई और ऐसे बहुत सारे नाम है, यहां तक कि वेश्याओं का एक संगठन था, उन्होंने भी इसमें भाग लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। तो इस तरह से ये 1857 से चालू हुआ, 58 तक ये खत्म हो गया। उसके बाद में सारा शासक और भारत का पूरा कब्जा इंग्लैंड के हाथों में चला गया। अब हम थोड़ा डिटेल में एक वीडियो देखेंगे जिसके बारे में, जिसमें स्वतंत्रता का पूरा इतिहास आपको पता चलेगा।
को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन जमादार ने इनकार कर दिया।
एक सिपाही से पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट मंगल पांडे के साथ आ गई। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुले हाथ विद्रोह करने के लिए कहा और कोई अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद हताश मंगल पांडे ने अपनी ही बंदूक से खुद खुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को मेरठपुर में फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में एक रेजिमेंट के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगी कारतूस को हाथ लगाने से इनकार कर दिया और 10 मई 1857 को शुरू हुआ कर्फ्यू।
जिंदगी अप्रैल लाते तक आजाद आबाद और अम्बाला तक पहुंच सकी।
अंग्रेजों के दिमाग में यह मंगल पांडे का खौफ भी था कि मैरपुर के वाक्य के बाद वो हर पानी को पानी कहता
था। बहुत बड़ा सैन्य घटना था जहाँ 2357 भारतीय, 2038 प्रधान सिपाही और 12 तोपें रखी थी।
चौबीस
अप्रैल को घुड़सवार दस्ते के सेनानायक लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कार्मिशेल स्मिथ ने 90 हिंदुस्तानी सिपाहियों को परेड करने और गोलीबारी का अभ्यास करने को कहा। 90 में से 85 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया। 9 मई को इन सभी 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। 25 सिपाहियों की पत्नी खुदवाही ने बेड़ियों में बांधकर इनकी परेड कराई गई। 10 मई 1857 अगला दिन रविवार था। भारतीय सिपाहियों ने 3 बंगाल लाइफ कैवलरी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अग्नि सैनिक चिन्ह से छुड़ा लिए गए। एक दिन में मेरठ पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा हो गया।
करीब 5:30 बजे जितने अंग्रेज मौजूद थे मेरठ शहर बाजार के इलाके में उन सबके ऊपर हमले हुए, जिन्हें जोड़ के क्रांतिकारियों के उस सिपाही को छुड़ा लिया गया। जो अंग्रेज वहां पहुंचे थे भारतीय सिपाहियों को बताने, उनको समझाने की उनको सीधी भाषा में बता दिया गया कि कंपनी का राज हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है।
लेकिन तब तक हिंदुस्तानी सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके। सुबह 3 बजे बगल लाइफ कैलेंडरी दिल्ली पहुंचती।
इसी लाल किले में बहादुर शाह सफर चले गए। सिपाहियों ने बहादुर शाह से उनका नेतृत्व करने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त बहादुर शाह ने उत्साह नहीं कहा।
पूरी दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ विक्षोभ कर दिया। करीब 50 अंग्रेजों बहादुर शाह के नौकरों में ही महल के बाहर मार डाला।
अंग्रेजी अक्सर डर कर इसी कश्मीरी गेट इलाके में बने अपने घर में घुस गए। गदर के सिपाही सीधे कश्मीरी गेट की तरफ आगे बढ़े। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने यहीं पर अंग्रेजी फोर्ट पर तोपे गोले डाले। एक दिन की लड़ाई में ही कश्मीरी गेट से अंग्रेज भाग खड़े हुए थे। यहाँ की जमीन अंग्रेजों के फूट से लाल हो गई थी।
हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के गोले बारूद के अड्डे पर कब्जा न कर ले, इसलिए अंग्रेजों ने ही अपने गोले बारूद ध्यान लगा। अंग्रेज दिल्ली छोड़कर करनाल की तरफ भागने लगे। अगले दिन 12 मई को बहादुर शाह ने कई सालों बाद अपना पहला दरबार यहां लाल किले में लगाया। बादशाह ने हिंदुस्तान के तौर पर बहादुर शाह सफर की ताजपोशी की। 13 से 31 मई के बीच फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, इटावा, मैनपुर, रुड़की, एटा, नसीराबाद, मथुरा, लखनऊ, बरेली और शाहजहांपुर में विद्रोह की आग फैल चुकी थी। 7 और 8 जून को झांसी में रानीगंज के बाद पूरे 48 घंटे तक लड़ती रही। इसके बाद अंग्रेज भाग गए।
झांसी पर लक्ष्मी बाई ने झंडा फहरा दिया।
मैं लक्ष्मी बाई को झांसी चलाई, झांसी को अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दूंगी।
तीन दिन बाद 16 अगस्त को बिठू में तात्या टोपे के लिए पराजय। अब अंग्रेजी सेना ने कॉलिन कैंपबेल को अपना कमांडर बनाया। कैंपबेल के कमांडर बनते ही दिल्ली पर कब्जे का युद्ध शुरू हुआ।
इस बात के नुकसानी सिपाही अंग्रेजी फौज अपने साथ सोख लेकर आए और सुबह सुबह सोते हुए सिपाहियों पर ही गोले दागते। कश्मीर गेट की तरफ जाने वाला पुल उड़ा दिया गया।
देखिए पहले कश्मीर गेट ऐसा दिखता था, लेकिन 14 सितंबर की दोपहर ऐसा नजर आ रहा था। इस कश्मीरी गेट की ईंटें आज भी अंग्रेजों के बालों की गंध समेटे हुए हैं।
आज भी कश्मीरी गेट के इलाके में गदर के निशान साफ दिखाई देते हैं। इन दीवारों ने अंग्रेजी तोप के गुरु को सहा दिया।
20 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। इस 1 लाख रुपया कमाने वाले सुपर बादशाह ने कंपनी सरकार के खिलाफ
अपने सरग्रंथ के गर्द कमा उठाई। तुम लोग लाल किले के मुलाजिम थे, जब तुम्हें नमाज में रास्ता पकड़ा तो मैं सजा देने के लिए नाम क्या बनाऊंगा।
सितंबर को बहादुर शाह जफर ने हिमालय के मकबरे में अंग्रेजों के सामने तय कर दिया।
इस 1 लाख रुपया कमाने वाले सुपरबादशाह ने कंपनी सरकार के खिलाफ
अपने सरग्रंथ के गर्द चला उठाए। तुम लोग लाल किले के मुलाजिम थे, जब तुम्हें नमाज में रास्ता पकड़ा तो मैं सजा देने के लिए नाम क्या बनाऊंगा।
अब एक दिन बिलायती फौज का मिशन विजय बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल किसरो सुल्तान और पोते अबूबकर को लाल किले की तरफ लेकर चला। इसी उन्हीं दरवाजे के पास विलियम डिक्सन ने मुगल वंश के तीनों शहजादों को बग्घी से उतरने के लिए कहा और फिर विलियम डिक्सन ने अपनी पिस्तौल निकालकर गणपति पर सजा कर तीनों को मार दिया। तीनों राजकुमारों की बिना कपड़ों की लाश इन्हीं पास की कोतवाली में लटका दिया गया। 22 सितंबर पूरे दिन लाश से खून धमकता रहा और अंग्रेज जीत का जश्न मनाते रहे। दिल्ली हाथ से जा चुकी थी। अंग्रेजी सेना का चीफ जनरल कैंपबेल हजारों की विदेशी फौज लेकर तात्या टोपे से लड़ने आया। लेकिन इस युद्ध में कुंवर सिंह की बात में कोई भी हट नहीं। رہنا پہلے پچھلے کمر سنگھ نے اپنی بات کاٹ دی, لیکن 3 دن بعد 26 اپریل کو کمر سنگھ ویر کبھی اٹھا. انگریزی اور ہندوستانی سینا ٹکرائی, اس بار ہندوستانی سینا کی نائکا تھی رانی لکشمی بائی. رانی لکشمی بائی نے گوالیر کے قلعے پر قبضہ کر لیا. 17 جون 1858 کو انگریزوں نے گوالیر کو گھیر لیا. 18 جون کو گوالیر کے پور باغ میں رانی لکشمی بائی اکیلے انگریزوں سے لڑ رہے. اس ویرانگنا نے اپنے خون کے آخری قطرے تک ہر ماتا کی حفاظت کی. رنبھومی میں ہی لکشمی بائی شہید ہو گئی. لکشمی بائی کے بلیدان نے برٹش حکومت کی نیند گرا دی. ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت کی سدا برٹش کے مہاراجا وکٹوریا کے پیروں میں ڈالی. اب بھارت سیدھے سیدھے انگریزی تاش کا غلام ہو چکا تھا.
نام گاندھی ہے, موہن داس کے نام. تم جب کوئی بھی اگوائی کرتے
نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں آپ چلے جاتے گا ہے
گاندھی جی کے نیتر میں بہار کے چمپارن ضلع میں سن 1918-1920 میں پہلا ستیاگرہ کا آندولن ہوا۔ تب کوئی نہیں جانتا تھا کہ لال سے نہیں کپڑے رکھنے والے نیند سے ہندوستان کی آزادی کے آندولن کی نئی نیند رکھ چکا ہے۔
مجھے افسوس ہے آپ گرفتار کیے جاتے ہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں۔
گاندھی جی کو چمپارن چھوڑنے کا حکم ملا لیکن گاندھی جی کے ساتھ ہزاروں کسان کھڑے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کے ضلع مجسٹریٹ نے گاندھی جی کو بلا ضمانت کے چھوڑ دیا لیکن گاندھی جی نے کہا قانون کے مطابق سزا دو۔ اس بدلے دبلے انسان سے انگریز ڈر گئے۔ جو کام مزدور کو تلوار نہیں کر پایا وہ گاندھی جی کے مضبوط ارادوں میں کر پایا۔
Thank you.
گاندھی جی کے وچار کو زور کا چھڑتا ہے مہاتما نے ایسا کیوں کا تورن واپس دے دیا ہم یہاں اندر کرتے ہیں
مسلم لیگ دیش کو بانٹنے کا فارمولا ڈھونڈ رہی تھی
और हिंदुस्तान में आया चिन्ना नेता आगा खान चौधरी रहमत अली और एक बात के बार बार कहते पर साल 1934 में मोहम्मद अली जिन्ना को आगे बनाया गया। 1933 में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग आ गई, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा किया। जनरल कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बता दी।
Under millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 million in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the curfew of the beach homeland of ours.
Pakistan ka naam sabse pehle Britain mein Chaudhry Rehmat Ali ne liya tha. Jinnah ke kisi dost the. भारत के पश्चिमी हिस्से के पांच राज्यों को जोड़कर पाकिस्तान का खाता बना। 28 जनवरी 1933 को समय रहमत अली के पक्ष नाउ और नेवर आर्मी लिव और फिश फॉरएवर में पाकिस्तान का नाम मिलता है। उन्नीस में दुनिया बदल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। गांधी जी ब्रिटेन के समर्थन में खड़े थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की। अंग्रेजों को नेताजी के प्लान का अंदाजा लग चुका था। सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। तब नेताजी मध्य कमरे में स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे। इधर हिटलर का भारत बाटो प्लान तैयार था। चालीस के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि मुस्लिम लीग का मकसद पाकिस्तान का जन्म है। गांधी जी ने मुंबई में जिन्ना से 14 बार बातचीत की, लेकिन जिन्ना सिर्फ पर पड़ गए।
महात्मा गांधी हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान
तो मिनिमम जस्टिस के तहत दो अलग अलग सरकार बनाने की तस्वीर और पकड़ बचा कर
तभी नेता बंदी बना दी है।
अवकाश बनी कसम के निकल देता है। दो अवकाश के दिन उन्होंने फील्ड का नेतृत्व करते हुए मुंबई के इसी पानिया टैंक मैदान में 13 घंटा पैदा कर अंग्रेजों को खुली चुनौती देना है।
इसके बाद अदब क्रांति मैदान के नाम से जाना जाने लगा। अपनी जान और इंतजाम करने को तैयार नहीं था।
आजादी की आस्था पूरे हिंदुस्तान ने अंग्रेजी को मंशा मरा दी।
सब कुछ चालू था, अभी पहला विश्व युद्ध युद्ध हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होने वाला था। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी जो फौज है उसको तैयार कर रहे थे, एक तरफ महात्मा गांधी का आंदोलन चालू था, देश अभी तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो बलिदान है उसको भूला नहीं था। सारे संसार में, जैसे संपूर्ण भारत में जो वातावरण था, एक अस्थिर वातावरण था, राजनीतिक अस्थिर था, धार्मिक अस्थिर था, सामाजिक अस्थिर था। उसी बीच में एक और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। वो कौन सी बात हुई? एक ये वही समय था जबकि भगवान ने अपने आने का समय चुना।
Thank you.
उसके बाद में भारत तो स्वतंत्र हो गया, पर उसके बाद भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। वास्तव में क्या हम स्वतंत्र हैं? ये सोचने का विषय है। गुजरात के रायट्स हो चाहे चौरासी का सिख रायट्स हो चाहे बॉम्बे ब्लास्ट हो, बहुत सारी चीजें हमको और भी करनी है। वही बाबा इसके लिए ही अच्छी स्वतंत्रता देने आया है। और इस सेशन का अंत कर रहा हूँ। श्रद्धांजलि भावांजलि उन सभी शहीदों के लिए जिनकी कुर्बानी के प्यार से भारत स्वतंत्र हुआ। थैंक यू।
थैंक यू भैया,
स्वतंत्रता
सेनानी, एक्स फ्रीडम फाइटर।
फिर से बोलिए डैग सबूत दिखाने के लिए।
दूसरे जो लास्ट जो था